यदि हम कृष्ण भक्ति के विषय में नहीं सुने तो हम उस स्तर पर आकर भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमारे शरीर में उचित प्रकार का हर प्रकार से शक्ति है, जवानी है, तो हमें भगवान की भक्ति में हमारे इस शरीर को लगाना चाहिए। यही बात कहने लगे, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे, क्योंकि मेरा शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला है, क्यों ना आप इस शरीर का सदुपयोग करो। आपको इससे अस्त्र बनाने हैं, चिंता की बात नहीं है, अस्त्र बनाओ। तो उस समय उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, तत्क्षण त्याग दिया, और उनकी अस्थियों से इंद्रदेव ने एक सुंदर वज्र का अस्त्र निर्माण किया, और उस वज्र के अस्त्र को लेकर सारे देवतागण बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको लगा कि अब वृत्रासुर नहीं बच सकता। वृत्रासुर सारे दानवों के साथ देवताओं के ऊपर आक्रमण किए और दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। पहले प्रतीत हो रहा था मानो देवतागण हार रहे हैं, उसके पश्चात देवताओं ने ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाए कि सारे राक्षस गण सरपट भागने लगे वहां से। तब वृत्रासुर उनके बीच आए और उनको रोकने लगे और चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अरे कहां भागते हो, आप क्षत्रिय योद्धा हो, युद्ध में आपको खड़े होकर सबका सामना करना चाहिए, आप पीठ दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह वो सारे राक्षसों को ललकारने लगे, रोकने लगे, लेकिन राक्षसों ने निश्चय कर लिया था कि यहाँ खड़े होकर हम इंद्रदेव के वज्रास्त्र का सामना नहीं करने वाले, सब भागने लगे। तभी वृत्रासुर ने सोचा कि अभी इस युद्ध को मुझे अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा, और वृत्रासुर सामने आ गए और उन्होंने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। इंद्र के जैसे ही समक्ष आए, इंद्र को देखकर उन्हें अपने भाई की मृत्यु याद आ गई, विश्वरूप की मृत्यु, और इंद्रदेव को देखकर वो इंद्रदेव को बुरा भला कहने लगे, कहने लगे कि इंद्रदेव तुम तो ऐसे पापी प्राणी हो कि बार बार पाप करते हो, पहले एक ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, उसके बाद दूसरे ब्राह्मण को ले आए और उसे जान से मार दिया, तुम कौन हो, तुम वास्तव में इतने पापी हो कि यदि आपके शरीर को अंत में अग्नि पर भी डाला जाए तो अग्नि भी तुम्हारे शरीर को स्पर्श नहीं करेगा, घबराएगा, शर्माएगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर केवल पापों से ही भरा हुआ है। और जहां तक तुम्हारा प्रश्न उठता है, क्योंकि तुम्हारा ये अस्त्र भगवान श्री नारायण ने दिया है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में तुम विजयी हो जाओगे। और इंद्रदेव को देखकर वही राक्षस वृत्रासुर ऐसे ऐसे सुंदर श्लोकों का वर्णन करने लगे जो कि बड़े बड़े भक्तगण वृत्रासुर के महान स्तुति के रूप में जानते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत के इसी छठे स्कंद में आता है। वो कहने लगे, अहम हरे तौ पादय कमूल दासानुदास भवितास्म भूय, मनः स्मरेद आशु हरेर पदांस्ते वृणीत वा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर के ये सुंदर श्लोक पूरे श्रीमद् भागवत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अनेक प्रसिद्ध स्तुतियों में से वृत्रासुर के ये श्लोक हैं। वो कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों का आश्रय चाहता हूँ, लेकिन वो आश्रय किस प्रकार चाहता हूँ, दासानुदासो भवितास्म भूय, आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ, और क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिह्वा का प्रयोग आपकी सुंदर लीलाओं की स्तुति में, अपने कान का प्रयोग आपकी लीलाओं का श्रवण में, और अपने शरीर का प्रयोग आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, मेरे जीवन में और कोई आकांक्षा नहीं है सिवाय इसके। दासानुदासो भवितास्म भूय। जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरतूर पद कमलोर दास दासानुदास, इसी तरह वृत्रासुर राक्षस इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं ये राक्षस नहीं, राक्षस की योनि में भगवान के उत्तम भक्त बैठे हैं। और आगे कहने लगे, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सर्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवन वा बिना समंजस रसो निकांक्षे। इतना सुंदर श्लोक, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम, उसी तरह यहाँ पर वृत्रासुर कह रहे हैं न नाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम, मुझे इंद्र का लोक नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए, मुझे भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे भौतिक जगत की किसी भी उपलब्धि से कोई आसक्ति नहीं, मैं केवल एक ही बात चाहता हूँ कि आपका नित्य स्मरण रहे और बार बार आपकी सेवा प्राप्त हो। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। हर जन्म में हर जीवन में। तो एक बार एक साधु थे जो ये श्लोक कह रहे थे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये युगायतम निमेशे न चक्षुषा प्रावृषायतम। दो लाइन कह के अगले श्लोक पर चले गए। तो उनके बगल वाले साधु ने कहा, क्यों भाई ये क्यों कर रहे हो, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे क्यों नहीं कर रहे हो? बोले, इससे तो बड़ा डर लगता है, भगवान इस बात को गंभीरता से ले लें तो हर जन्म में मुझे यहीं अटका के रख देंगे। तो न धनम न जन्म न सुंदरीम सब ठीक है, लेकिन कम से कम देह को त्यागने के बाद मुझे गोलोक ही जाना है, बार बार नहीं आना। तो ये प्रार्थना बहुत ही उच्च कोटि की प्रार्थना है, कोई साधारण व्यक्ति ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। और कहने लगे, अजात पक्ष इव मातरम खगा संयम यथा वत्सरता क्षुदार्था प्रियम प्रियैव जुषितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते यथा। ये कहने लगे कि मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करने की उत्कट इच्छा है और कुछ नहीं। और वो इच्छा कैसी है? वो जैसे अजात पक्ष इव मातरम खगा, किसी वृक्ष पर एक घोंसले में किसी पक्षी के छोटे छोटे बच्चे जिनके पर नहीं निकले हैं, निस्सहाय भावना से अपनी माता के वापस लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह मैं पूरी निस्सहाय भावना से आपके चरण कमलों का दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दूसरे, अजात पक्ष इव मातरम कगास्तन्यम वत्सरता क्षुदार्था। जिस तरह गाय के छोटे छोटे बछड़े पूर्ण रूप से अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं, वैसे मैं आपकी कृपा पर निर्भर हूँ हे भगवन। प्रियम प्रिय विषितम विषन्ना, जैसे कोई नवविवाहित वधु अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करती रहती है, बार बार देखती रहती है कि पति कब लौटेंगे, उसी तरह मैं बार बार इसी प्रतीक्षा में हूँ कि आपकी कृपा कब मिलेगी मुझे। मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते यथा, मेरे आंख केवल उस दिशा में है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कब मिले, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय कब मिले। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, युगायतम निमेशेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। यदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं, तो सब कुछ शून्य ही है। तो वृत्रासुर भी यही कह रहे हैं कि जैसे इन तीनों उदाहरणों दृष्टांतों में हमने देखा कि उस व्यक्ति का होना कितना आवश्यक है, वैसे मेरे लिए मेरे जीवन में बस भगवान आपका होना अति आवश्यक है। उसके पश्चात वृत्रासुर ने इंद्रदेव को ललकारा और कहने लगे, चलो इंद्रदेव युद्ध करो। तो इंद्रदेव ने अपने हाथ में व्रजास्त्र का प्रयोग किया और उस वज्र अस्त्र से वृत्रासुर के हाथ में त्रिशूल को तोड़ डाला और वृत्रासुर के बाएं हाथ को भी तोड़ दिया। वृत्रासुर एक हाथ में गदा लिए खड़े थे, लेकिन वृत्रासुर ने उस गदा को ली और सीधा ऐरावत के सर पर दे मारा। ऐरावत को दिन में तारे दिखने लगे और ऐरावत तुरंत वहीं गिर पड़ा, लेकिन सौभाग्यवश इंद्र के ऊपर नहीं गिरा, इंद्र के बगल में गिरा। इंद्रदेव खड़े होकर देखने लगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हाथ में तो वज्रास्त्र भी नहीं है। तब वृत्रासुर इंद्र को प्रचार करने लगे कि अरे मूर्ख इंद्र, ये तुम विवश होकर इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो, जरा उत्साह दिखाओ, युद्ध की भूमि है और तेरे हाथ में जो अस्त्र है वो कोई साधारण अस्त्र नहीं है, ये भगवान श्री नारायण की शक्ति प्राप्त हुई अस्त्र है। भगवान ने इच्छा की है कि मेरी मृत्यु हो, भगवान अच्युत हैं, जब एक बार वो एक वचन कह दे तो उनके वचन को कोई नकार नहीं सकता, इट इज ऑर्डेन्ड बाय द सुप्रीम। इसीलिए आप इस अस्त्र को उठाओ और उत्साह के साथ मुझ पर आक्रमण करो, देखो मुझे देखो, पश्चमे निर्जितम शत्रुम वृकणायत गृहामिधे, मेरा हाल देखो, मेरा एक हाथ टूट गया है, मेरा एक हाथ टूट गया है, बस एक ही हाथ मेरे पास बचा है, लेकिन फिर भी युद्ध भूमि पे मैं कितने उत्साह के साथ युद्ध कर रहा हूं, और मैं इस बात से भी पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि मेरी मृत्यु होने वाली है 100%, फिर भी देखो कितना उत्साह है मेरे अंदर, और तुम्हारे अंदर इतना भी विश्वास नहीं, चलो उठाओ इंद्र, उठाओ इस अस्त्र को और युद्ध में फल के विषय में चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशय। इसीलिए योद्धा को चाहिए कि केवल युद्ध करे। यहाँ पर वृत्रासुर एक राक्षस की योनि में है, लेकिन देखिए वैराग्य का क्या ज्ञान दे रहे हैं इंद्रदेव को, कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, तुम युद्ध करो, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध करूँगा, ये नहीं कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ, तुम आके मारो, नहीं, इतनी आसानी से मारने नहीं दूंगा। तो उसी तरह जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान हमारे साथ हैं, और भगवान अंततः इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हमारे सब प्रयासों को सफल करेंगे। हमें इस बात में पूर्ण रूपेण विश्वास होना चाहिए। तो वृत्रासुर के ऐसे कहने पर इंद्रदेव को जरा उत्साह आया और इंद्रदेव ने अपने अस्त्र को उठाया और इंद्रदेव ने वो अस्त्र वृत्रासुर के ऊपर चलाकर उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ दिया। वृत्रासुर के दोनों हाथ कट गए। अब वृत्रासुर करे तो क्या करे, वृत्रासुर ने अपने मुंह को खोल लिया और इंद्रदेव ऐरावत समेत अंदर ले लिया। बेचारे ऐरावत का तो उस दिन बहुत बुरा हाल था, कैसे कैसे दुर्घटनाओं का सामना कर पड़ा, एक ही दिन में अंदर चले गए, लेकिन इंद्रदेव इतने आसानी से मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाले थे क्योंकि उनके हाथ में वज्रास्त्र था। तो वज्रास्त्र के बल पर इंद्रदेव वृत्रासुर की पेट में जाकर भी उनके पेट को काटने लगे और धीरे धीरे पेट को काटने के पश्चात वो उनके गले के निकट आए और उनके गले को काटने का प्रयास किया, लेकिन वृत्रासुर इतने शक्तिशाली थे कि इंद्रदेव को 360 दिन लगे उनके गले को काटने के लिए। सोचो, फुल टाइम एक साल तक वही उनका काम रहा। एक साल तक किसी अप्सराओं का नृत्य वृत्त नहीं देखा, एक साल तक बस लगे हुए थे वृत्रासुर के गले को काटते हुए। तब इंद्रदेव को समझ में आया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वास्तव में लगता है भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है इन्हें। लेकिन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इंद्रदेव तो एक मृत शरीर को काट रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंद्रदेव उनके मुंह के अंदर गए, वृत्रासुर ने तत्क्षण उसी समय देह त्याग दिया और वृत्रासुर उसी समय संकर्षण भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए सीधा भगवत धाम पहुंच गए थे। और वृत्रासुर का केवल मृत शरीर जमीन पर पड़ा था और इंद्रदेव मृत शरीर को काटने का प्रयास कर रहे थे, बेचारे इंद्रदेव। लेकिन यहां मुख्य बात यह है कि असली विजय किसकी हुई, ये तो सारे प्रसंग का मूल भूत अंतिम यही निष्कर्ष है। जीत किसकी हुई, विजय किसकी हुई? वृत्रासुर हार गए, इंद्रदेव जीत गए। लेकिन इंद्रदेव को जीत कर भी मिला क्या? वही स्वर्गलोक, जहां फिर वही समस्याएं, वही राक्षसों का आक्रमण और फिर यहां वहां भागना। क्योंकि अगले सातवें स्कंद में हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने कैसे त्रास दिया उनको, कैसे परेशान किया। लेकिन यहां वृत्रासुर को कौन सी गति मिल गई? वृत्रासुर राक्षस की योनि में होते हुए भी, युद्ध को हारते हुए भी भगवत धाम पहुंच गए। तो देखिए, असली विजय किसकी है? असली विजय का अर्थ है हम इस देह को त्यागने के पश्चात भगवत धाम पहुंच सकें, वो हमारे जीवन का असली विजय है। भौतिक जगत में 50, 60, 70 साल के अंदर कोई नुकसान होता है, कोई लाभ होता है, कोई हानि होती है, ये सब चलता रहता है। 50, 60, 70 साल क्या हैं? लेकिन जीवन के अंत में मृत्यु के समय हमारी चेतना क्या है और मृत्यु के पश्चात हम कहां जाते हैं, कौन से गंतव्य को प्राप्त करते हैं, ये मुख्य प्रश्न चिन्ह है हमारे जीवन का। और यहां पर वृत्रासुर को जीवन में सबसे सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त हुई, भगवान के धाम में जाकर भगवान के चरण कमलों की सेवा। इसीलिए विजय किसकी हुई? वृत्रासुर की हुई। और वो वृत्रासुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के महान भक्त थे। तो इसीलिए स्वर्गलोक वगैरह की प्राप्ति कोई विशेष नहीं है। जैसे येरावड़ा जेल की एक और बात बताता हूं, वहां गए थे तो अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये जेल है। अंदर अच्छे अच्छे गार्डन हैं, फूल हैं, फल हैं और रोड बिल्कुल सुंदर सजे हुए बने हुए हैं। और अंदर किसी कैदी को पूछो यहाँ कैसा लग रहा है, वो कहता है आनंद आ रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है, बड़ी स्वच्छता है। और उनका अपना एक फार्म है जहाँ पर सारे कैदी काम करते हैं और वहाँ सुबह जो सब्जी तोड़ते हैं उसी सब्जी का वहाँ पर दोपहर में प्रयोग होता है। बम्बई में भी हम लोग इतनी ताजी सब्जी नहीं खाते जो अंदर जेल के अंदर वो खाते हैं। तो वहां पर जितने भी लोग हैं अपने अपने जीवन से संतुष्ट हो गए हैं, कोई 20 साल 25 साल से है लेकिन कहता है ठीक है, सब सुरक्षित है, सब कुछ सुविधा है, बस यही है कि बाहर जाने नहीं देते, लेकिन बाकी सब कुछ है। तो ये स्वर्ग लोक की अवस्था है। स्वर्ग लोक में सारी व्यवस्थाएं हैं। वहां पे एक व्यक्ति को पूछा तुम क्या करते हो, उसने कहा मैं यहाँ का बैंड का लीडर हूँ, यहाँ ऑर्केस्ट्रा है और इस ऑर्केस्ट्रा का मैं नेता हूँ। और 5:30 के बाद शाम को सबको एक साथ बंद किया जाता है, तो जितने भी ऑर्केस्ट्रा वाले लोग हैं सबको एक साथ बांध दिया जाता है, बंद किया जाता है, जिससे वो लोग अपना प्रैक्टिस कर सकें रात भर। और वो इस तरफ बाहर जाकर प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं और अपने इस जीवन से काफी संतुष्ट लग रहे थे। तो ये देखकर तुरंत श्रीमद् भागवत में स्वर्ग लोकों का वर्णन याद आया कि बंदी होने पर भी आदमी कैसे संतुष्ट हो जाता है। इसलिए वृत्रासुर के इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि अंततः जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना, और यदि हम किसी को प्रचार करें तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं और मैंने कुछ 2 घंटे या 1 घंटे या 15 मिनट आधा घंटा दे दिया तो कोई बहुत बड़ा काम किया। नहीं, ये हमारे जीवन का अंततः उद्देश्य है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना और वापस भगवत धाम जाना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रभानंद। तो एक आखिरी बात, शिला प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति ने इस तरह पूछ ही लिया कि प्रभुपाद जी आपने इंद्रदेव का दर्शन किया है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा, जब मैं राजा को जानता हूं तो चपरासी से क्या लेना देना। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति प्राप्त करे उसे और अन्य देवी देवताओं के साथ कोई लेना देना नहीं, भगवत धाम जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जाना है हमको वैकुंठ धाम, टिकट है हरि नाम। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो उपस्थित सभी भक्तजनों का हम इस श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें दिन पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तथापि कीर्तया मंग यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिदासतिम। श्रीमद् भागवत के 3rd स्कंद में वर्णन आता है कि मैत्रेय मुनि उद्धव से कहते हैं और विदुर जी से कहते हैं, तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, आपने मुझसे काफी सारे प्रश्नों का उत्तर मांगा है, लेकिन मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता मुझ में नहीं है। तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम। तो जो मैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान आपको देने का प्रयास करूंगा, यथामति यथाश्रुतम, जहां तक मुझे स्मरण होगा और जहां तक मैंने अपने गुरु से श्रवण किया है, उतना ही मैं आपको बता पाऊंगा। कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम, मैं कीर्तन या भगवान का लीलाओं का कथन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अपनी जिह्वा को इस तरह भगवान और इनकी लीलाओं के कीर्तन में लगाए रखो तो उससे शुद्धिकरण होता है। कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिदा असतीम। और यदि मैं अपनी जिह्वा को भगवान की लीलाओं के कथन में नहीं लगाऊंगा तो ये जिह्वा भौतिक विषय वस्तु के बारे में चर्चाएं करेंगी। इसीलिए इस जिह्वा को वैश्या प्रवृत्ति से बचाने के लिए मैं भगवान की लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। इस तरह मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, एकांत लाभं वचसानुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहुर श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपकृतायां कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आता है, एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम, यदि हम अपनी जिह्वा का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कथन में लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं एकांत लाभम, यह जिह्वा की परिपूर्णता है कि श्रीमद् भागवत के विषय में चर्चा कर सकें। वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन आता है और इतने सुंदर श्लोकों में और काव्यों में भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन है कि जब जिह्वा से हम भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन करते हैं तो इससे अधिक परिपूर्णता जिह्वा की और किसी कार्य में नहीं होती। सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। और जहां तक हमारे कानों का प्रश्न उठता है, श्रुतेश्च विद्वद्भिर् उपाकृतायाम, हमारे कानों पर कृपा करके अनेक ऋषियों ने, जैसे व्यासदेव इत्यादि ने, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों के माध्यम से हमें दिया है कि केवल इन श्लोकों का हम वर्णन करेंगे और इन काव्यों का वर्णन करेंगे और जब अपने कर्णों के माध्यम से इन सभी कथाओं का हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा? श्रुतेश्च विद्वद्भिर् उपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम, ये हमारे कानों की परिपूर्णता है। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण और कीर्तन हमारी सभी इंद्रियों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तब तक हमें प्राप्त नहीं होगी जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता। इसीलिए कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम, बैठकर प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मन लगाकर यदि श्रवण करेंगे तो कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम, ये हमारे कानों की परिपूर्णता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य दूसरा कोई नहीं। जब श्रील सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषिगणों के बीच में उपस्थित होते हैं तो श्रील शौनक ऋषि कहते हैं, कर्मणि अस्मिन् अनश्वासे धूम्र धूम्रात्मवान भवान आपायेति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। कि देखिए सुत गोस्वामी महाराज, आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। क्यों? कर्मणि अस्मिन् अनश्वासे धूम्र धूम्रात्मवान भवान, हमने 1000 साल का एक यज्ञ का आरंभ किया है। इस यज्ञ को जब से हमने आरंभ किया है, यज्ञ की अग्नि जलती रही है, कभी बुझी नहीं है। और 1000 सालों के इस यज्ञ के पश्चात भी हमें इस यज्ञ से क्या प्राप्त हुआ है? धूम्र धूम्रात्मान भवान, केवल काला धुआं। हमारा चेहरा काला हो गया है, हमारा शरीर काला पड़ गया है, और दूसरा कोई लाभ हमें अब तक नहीं हुआ। और हमारा हृदय वैसे का वैसा काला ही है। इसीलिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, आपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु, कृष्ण सुत गोस्वामी महाराज, आप कृपा करके भगवान श्री गोविंद की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिनका तन्मयता के साथ श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय का असली शुद्धिकरण होता है। आपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के विषय में यदि हम श्रवण करेंगे और उनका स्मरण करेंगे तो हृदय का असली शुद्धिकरण होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे शुद्ध हैं। जिस प्रकार सूर्य के सामने कोई अशुद्धि टिकता नहीं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के सामने हृदय के अंदर की कोई भी अशुद्धि टिकती नहीं। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि जब हम श्रीमद् भागवत का प्रवचन का श्रवण करें तो ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यान पूर्वक श्रवण करना बहुत कठिन है, मन बड़ा चंचल है, यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, अन्य लोगों की सुगम यात्रा करता रहेगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि प्रयास करके इस मन को बार बार कथा में लगाने का भरपूर प्रयत्न करें, क्योंकि इस प्रयत्न से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये कठिन कार्य है, लेकिन यज्ञ का अर्थ यही होता है कि हम प्रयास करें। तो श्रीमद् भागवत के प्रवचन का कथन और उसके श्रवण का एकमात्र उद्देश्य है शुद्धिकरण। श्रीमद् भागवत का प्रवचन मनोरंजन के लिए नहीं होता, शुद्धिकरण के लिए होता है। कथावाचक श्रीमद् भागवत की कथा अपने स्वयं की शुद्धिकरण के लिए करता है, क्योंकि जब कथावाचक कथा कहता है तो सबसे पहले वो सुनता है, सुनना ही पड़ता है, इसीलिए उसका शुद्धिकरण होता है। और जो कथा का श्रवण करते हैं श्रोतागण, उनके हृदय का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत का कथन का श्रवण रोज हम नित्य क्रम से करेंगे तो हृदय का अति शीघ्र शुद्धिकरण होगा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद से चर्चा आरंभ करेंगे। कल हमने देखा कि छठे स्कंद में वृत्रासुर की किस प्रकार से मृत्यु हुई। वृत्रासुर भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और बाद में चल के छठे स्कंद में ही यह वर्णन आता है कि वास्तव में वृत्रासुर अपने पिछले एक जन्म में एक महान राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। लेकिन उस कथा के विषय में विस्तारित वर्णन करने का समय नहीं, क्योंकि कल से हम दशम स्कंद आरंभ करने वाले हैं, कृष्ण लीला। कल आठवां दिन है, अष्टमी जन्माष्टमी हम कल मनाएंगे, श्रीनाथ जी प्रभु की इच्छा है। तो आज हम जितना कुछ सातवें या आठवें या नवें स्कंद से चर्चाएं कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। तो सातवें स्कंद में वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के पश्चात बहुत दुखी होता है, और उसके मन में ये विचार आता है कि क्योंकि विष्णु ने मेरे परिवार के सदस्य की हत्या की है, मेरे अपने भाई की हत्या की है, इसीलिए मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। और वो कहने लगे, मत्शूला भिन्न गृहस्य भूरिना रुधिरेण वही अश्रिक प्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरम्ये गतव्यतः। हिरण्यकशिपु बड़ी जोर से पुकारता हुआ अपने सभी दानवों को बुलाता है और कहने लगता है कि देखो, मेरे जितने भी दानव सैनिक यहाँ पर खड़े हैं, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, मत शूला भिन्न ग्रीवस्य, मेरे हाथ में जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल का प्रयोग मैं विष्णु के सर को उससे धड़ से अलग करने के लिए करूंगा, और जब विष्णु का सर कट के नीचे जमीन पर गिरेगा तो उसके शरीर से, उसके देह से रक्तपात होगा, और उस रक्त को मैं अपने भाई हिरण्याक्ष की सेवा में लगाऊंगा, उसको अर्पण करूंगा, और जब मेरा भाई हिरण्याक्ष विष्णु के इस रक्त का पान करेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे, मेरे भाई हिरण्याक्ष को, लोगों के रक्त पीने की बड़ी इच्छा होती थी, तो मैं उसे विष्णु का रक्त पिलाऊंगा। यह हिरण्यकशिपु की इच्छा थी। लेकिन उस समय एक और समस्या ये थी कि हिरण्यकशिपु के परिवार के अन्य सदस्य बड़े दुखी थे, विशेष रूप से हिरण्यकशिपु की माँ और हिरण्याक्ष की पत्नी बहुत ही दुखी थे, क्योंकि हिरण्याक्ष की अकाल मृत्यु हो गई थी, विष्णु के हाथों। तो हिरण्यकशिपु अपने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने लगे। वो कहने लगे, भूतानामिव संवास प्रपायामिव सुव्रते दैवेनेकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी, कि इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु तो चलता ही रहता है। किसी व्यक्ति का किसी एक देह में जन्म होने के पश्चात कुछ समय तक किसी परिवार के संबंधियों के साथ लगा हुआ कुछ समय तक जीवित रहता है, लेकिन उसके पश्चात मृत्यु तो आती ही है। और जब परिवार के एक सदस्य की मृत्यु आती है, उसके पश्चात वो व्यक्ति भविष्य काल में किसी और योनि में या किसी और परिवार में जन्म लेता है, और वो परिवार के सदस्य हो सकता है कि भविष्य में कभी एक दूसरे से न मिलें। जिस तरह भूतानाम इव संवास प्रपायाम इव सुवृते, जैसे किसी होटल में भोजनालय में चार पांच लोग आकर बैठ जाएं, बैठने के पश्चात एक ही टेबल पर वो कुछ भोजन करें, लेकिन कब तक वहां पर बैठेंगे? जब तक भोजन पूरा न हो जाए। एक बार उनका भोजन संपन्न हुआ, उन्होंने बिल दिया, बिल के पैसे चुकाए, उसके बाद उस टेबल पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दिशा से दूर हो जाता है और भविष्य में वो कभी आपस में नहीं मिलता। या दूसरा उदाहरण दिया जाए तो बंबई में आप लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, बोरीवली में बैठे चर्च गेट तक आते हैं, एक ही डिब्बे में कितने ही लोग सफर करते हैं, वास्तव में सफर करते हैं, अंग्रेजी का सफर अर्थात बहुत दुख झेलते हैं, लेकिन कब तक? जब तक स्टेशन न आ जाए। लेकिन उस डिब्बे में जितने लोग आपके साथ सफर करते हैं, क्या उनके साथ आप कोई बहुत गहरा संबंध जोड़ने का प्रयास करते हो? नहीं, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि जब ट्रेन एक बार चर्च गेट स्टेशन पहुंच गया तो फिर हमें उतरना ही है। उतरना क्या, वहां के लोग पकड़ के उतार देंगे, हमारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। पहली बार जब मैं इस दिशा से गया था और चर्च गेट स्टेशन पे उतरने वाला था, लोकल ट्रेन के सफर का पहला अनुभव था, तो पता नहीं था कि चर्च गेट स्टेशन पर शाम के समय जब गाड़ी आती है तो क्या होता है। तो दरवाजे के पास खड़ा था और अचानक इतनी भीड़ ने आक्रमण किया, मुझे लगा पता नहीं यहाँ क्या कुछ लड्डू बटने वाले हैं कि नहीं, इतने लोग क्यों इतने आतुर हैं अंदर आने के लिए। तो उस समय जितने भी लोग अंदर बैठे हैं सब नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी का लक्ष्य वहां पर आ गया। उसी प्रकार मृत्यु के समय प्रतिमा से लेकर उस शरीर से निकालकर दूसरे किसी शरीर में फेंक दिया जाता है, कर्मणा दैव नेत्रेण। तो यही सिद्धांत हिरण्यकशिपु अपने परिवार के सदस्यों को सुना रहे थे। आत्मा परमात्मा और देह, किस तरह आत्मा एक देह से दूसरे देह को प्राप्त होती है, ये सिद्धांत बता रहे थे। तो देखिए, हिरण्यकशिपु एक राक्षस थे, लेकिन फिर भी कितने ऊंचे सिद्धांत के विषय में जानते थे। तो आप कहेंगे, यदि हिरण्यकशिपु गीता का ज्ञान बता रहे थे तो वो राक्षस कैसे हुए? वो तो भक्त होने चाहिए। नहीं, सिद्धांत के विषय में जानते थे, लेकिन भगवान के चरण कमलों के प्रति सेवा का कोई भाव नहीं था, इसीलिए वो भगवान से द्वेष करते थे और इसीलिए वो राक्षस थे। और उस समय हिरण्यकशिपु ने उन्हें एक कथा भी सुनाई कि किस प्रकार एक राजा था और उस राजा की मृत्यु हुई तो उनके सारे रानी ऐसे रोने लगे कि यमराज को स्वयं एक बच्चे के रूप में आकर वहां उन्हें प्रचार करना पड़ा। और इस कथा का तात्पर्य यही था कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनिश्चित है, कोई कितने साल तक जीवित रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरी माँ, कृपा करके आप ये मत सोचो कि ये मेरे जीवन में क्या हो गया, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। और उसके पश्चात हिरण्यकश्यपु ने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ 14 लोकों में जहां जहां ब्राह्मण बैठकर वेदों का पाठ कर रहे हैं वहां पर आग लगा दो, जहां जहां यज्ञ हो रहे हैं उन यज्ञ के स्थलों को नष्ट कर दो, जहां भी धर्म के सिद्धांतों का पालन हो रहा है वहां किसी को जीवित मत छोड़ो। इस तरह 14 लोकों में यथाशक्ति आप उत्पात मचाओ और तब तक मैं अपनी तपस्याओं के माध्यम से अपनी शक्ति को और बढ़ाता हूं, और जब मैं लौट कर आऊंगा तब मैं स्वयं 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान राजा बनूंगा। ऐसा कहके हिरण्यकश्यपु मंदार पर्वत पर चले गए तपस्याएं करने। और उन्होंने कैसी तपस्याएं की? अपने एक पैर के एक अंगूठे पर वो खड़े रहे और अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर रख के अपनी आंखों को आसमान की ओर टिकाकर हिरण्यकश्यपु इस तरह की भीषण तपस्या करने लगे जिसके विषय में कल्पना करना भी बहुत कठिन है। हिरण्यकश्यपु ने 100 साल तक ऐसी तपस्या की और जब वो तपस्या कर रहे थे उनके हाथ दोनों सर के ऊपर थे और सर ऊपर की ओर। सोचिए, एक स्थान पर 2-3 घंटा बैठना भी कितना कठिन होता है। सोचिए, एक अंगूठे पर 100 साल देवताओं के कोई खड़ा रहा तो क्या वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? 100 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया? सोचिए, 20-25-30 साल तक कोई ब्रह्मचारी रहे तो कौन सा बड़ा काम किया? हिरण्यकश्यपु 100 साल देवताओं के ब्रह्मचारी का व्रत पालन किया, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था? कि भविष्य में भरपूर भोग करो। तो इस तरह हिरण्यकश्यपु की तपस्याओं के फल स्वरूप उनके पूरे शरीर से अग्नि निकलने लगा, ऐसी ज्वाला जिससे 14 लोक के सभी प्राणी संतप्त थे, सारे देवता परेशान थे और भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, कृपा करके बचाइए, यह हिरण्यकश्यपु नाम का बहुत भयंकर राक्षस ऐसी भीषण तपस्याएं कर रहा है कि आपको भी बचना चाहिए। हम जानते हैं कि उनकी तपस्याओं के पीछे मूलभूत कारण क्या है। ब्रह्मा जी सावधान, हिरण्यकश्यपु तपस्या इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी तपस्या की शक्ति से आपका पद चाहता है, पहली बात। और दूसरी बात, तपस्याओं के फल स्वरूप वो पाप और पुण्य के क्रम को बदल देना चाहता है, अर्थात कोई पुण्य करे तो स्वर्ग लोक जाता है और कोई पाप करे तो नरक लोक जाता है। हिरण्यकश्यपु की इच्छा है कि ऐसी तपस्या करूं कि कोई पाप करे तो स्वर्ग लोक जाए और कोई पुण्य करे तो नरक लोक जाए। इतनी शक्ति प्राप्त करूं कि पाप और पुण्य के इस पूरे सिस्टम को ही बदल डालूं। सावधान ब्रह्मा जी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इतनी अग्नि उसके देह से निकल रही है, प्रतीत हो रहा है मानो हम सभी जलकर राख हो जाएंगे, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी देवताओं के कहने पर तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर हिरण्यकशिपु के निकट गए। जब हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत पर स्थित थे, जैसे ही ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के समक्ष आए, ब्रह्मा जी को सबसे पहले दिखे नहीं कि हिरण्यकशिपु है कहाँ, क्योंकि इतने सालों के भीषण तपस्या के पश्चात हिरण्यकशिपु का संपूर्ण शरीर मिट्टी से ढक गया था और ब्रह्मा जी को पहले दिखा नहीं कि ये हिरण्यकशिपु है कहाँ। फिर बड़ी सावधानी से देखा तो उनको दिखा कि एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला है, चींटियों का ढेला, और उसमें से अग्नि निकल रही है। और उस अग्नि को देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि अवश्य ही इस मिट्टी के ढेले के अंदर हिरण्यकशिपु होगा। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने अपने कमंडलों से हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर, देह के ऊपर पानी से